जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Thank you. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Gopula Nanda Radha Gopula Nanda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Hari bol, Nittai Gaura Hari bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Stotra Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Gokulananda Ki Jai Sri Sri Gaur Nitai Ki Jai Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Sri Gaur Purnima Mahotsav Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Guru Gauranga Ki Jai Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurundinatarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन पिछले दो तीन दिनों से चल रहा है और कल ये चर्चा हो रही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सात प्रहर या भाव की लीला या महाप्रकाश लीला प्रारंभ की थी, जिसमें कि उन्होंने न केवल अपने विभिन्न अवतारों का दर्शन करवाया भक्तों को, बल्कि साथ साथ सारे भक्तों को उन्होंने शुद्ध प्रेम का वरदान प्रदान किया। साथ साथ जितने भी भक्तों की इच्छाएं थीं, समस्त इच्छाओं की उन्होंने पूर्ति भी की। जैसा कि हम कल बता रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण होने के बाद भी इस अवतार में भक्त की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए अपने आप को भक्त के रूप में ही पेश करते थे सबके सामने, वैष्णवों को प्रभु कह के बुलाते थे। कभी कभी थोड़े क्षणों के लिए वो अपने भगवत्ता का प्रदर्शन करते अवश्य थे, परंतु भाव विभोर होकर, और ऐसे प्रतीत होता था कि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो अपने भगवत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु इस सात प्रहर या भाव के लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 21 घंटे सात प्रहर अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया और अच्छी तरह से उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। देखने वालों को भी पता चला कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक के बाद एक सारे भक्तों को बुलाना शुरू किया जो उपस्थित नहीं थे, और हर एक भक्त के साथ जो बहुत ऐसे गोपनीय घटनाएं हुई थीं उनके जीवन में, उनका वर्णन किया और बताया कि किस तरह से उन्होंने स्वयं उस घटना में उस भक्त की सहायता की थी, उनके ऊपर कृपा की थी। एक भक्त को उन्होंने सुनाया कि कैसे तेज बुखार के समय उन्होंने आकर बुखार कम करवा दिया था। श्रीवास ठाकुर को याद दिलाया कि कैसे देवानंद पंडित के शिष्यों ने उनसे बुरा व्यवहार किया था और वो स्वयं उनके हृदय में प्रकट हुए थे, और उनको भक्ति का रस का स्वाद दिलाया था। गंगादास पंडित को उन्होंने बताया कि कैसे माझी के रूप में आकर उन्होंने उनको गंगा पार करा दिया था, और फिर श्रीधर खोला वेचा को बुलवाया, जो कि श्री कृष्ण के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने उनको याद दिलाया कि कैसे लीलाएं वो उनके साथ करते थे, कैसे उनके केले आदि चोरी किया करते थे, या जानबूझकर हैरान करके उनको कम कीमत पर वो केले आदि ले आते उनसे। फिर श्रीधर खोला वेचा के ऊपर ऐसी असीम कृपा बरसाई श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि उनको शुद्ध प्रेम प्रदान कर दिया। यद्यपि महाप्रभु ने श्रीधर खोला वेचा से निवेदन किया कि तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, मैं अष्ट सिद्धि भी प्रदान करने के लिए तैयार हूँ, परंतु श्रीधर खोला वेचा ने ऐसे कुछ नहीं चाहा, केवल यही चाहा कि मैं सदैव आपके पवित्र नामों का उच्चारण ही करता रहूं। महाप्रभु ने बाद में श्रीधर खोला वेचा से कहा कि तू कुछ मेरी स्तुति करो। श्रीधर ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता। फिर भी महाप्रभु की कृपा से दिव्य शक्ति प्रदान कर दी उन्होंने, जिससे कि श्रीधर खोला वेचा बहुत सुंदर स्तुति भगवान की कर पाए। इसके बाद में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की खूबी। कौन पहचान सकते हैं उन्हें? कौन जान सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निर्धन है, जो दिखने में बहुत साधारण व्यक्ति है और उसके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, व्यवसाय भी बहुत साधारण है, केले बेचता है, और ऐसा व्यक्ति एक परम भक्त हो सकता है? कौन सोच सकता है ऐसे? सच्चे वैष्णव को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए कभी भी वैष्णव को बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर चेतावनी करते देते हैं हम सबको कि हमें पता नहीं कि कौन कैसा भक्त है इस दुनिया में। बाहरी लक्षण तो ठीक है, अपनी जगह में महत्वपूर्ण तो होती हैं। हम तिलक आदि धारण करते हैं ताकि हम याद रखें कि हम वैष्णव हैं, और सामने वाला आदमी भी याद रखे कि हम वैष्णव हैं, वो भी कृष्ण का स्मरण करें। परंतु केवल तिलक धारण करने से, वैष्णव के बाहरी चिन्ह धारण करने से आदमी वैष्णव नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से श्रीधर खोला वेचा को पहचानना ये एक साधारण आदमी के लिए संभव नहीं था, बल्कि जो नवद्वीप के निवासी थे वो उनकी बहुत निंदा करते थे। ये भूख के मारे सारे रात भर यहाँ चीखता रहता है कृष्ण का नाम, शायद इसीलिए ये कीर्तन करता है। वो नहीं समझ पाए कि श्रीधर खोला वेचा उच्च कोटि के भक्त थे, इसलिए कृष्ण कीर्तन के बिना नहीं रह सकते थे। तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर सारे भक्तों को बताते हैं, सारे दुनिया को बता रहे हैं, घोषणा करते हैं कि देखो भगवान के भक्तों की खूबी क्या होती है। और जिसके पास विद्या है, सौंदर्य है, ऊंचे कुल में जन्म है, बुद्धि है, धन है, इन सब चीजों का क्या लाभ? बल्कि ऐसी चीजें होने से व्यक्ति को गर्व और अभिमान मात्र होता है, जिससे कि वो अपना सर भगवान के सामने, भक्तों के सामने झुका नहीं सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संदर्भ में कुंती महारानी की स्तुति से एक श्लोक बताते हैं। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भीर एधमान मदहपुमान नैव हरति विधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचर। कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, जिस व्यक्ति का जन्म एक ऊंचे कुल में हुआ है, जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत विद्या है इस दुनिया की, और जो बहुत सुंदर है, वो कैसे आपके पास आ सकता है? वो तो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो मानो शराब पीकर उन्मत्त हुआ हो। जब व्यक्ति उन्मत्त अवस्था में आ जाता है तो वो अनाप शनाप वो बकने लगता है, कुछ ना कुछ कह देता है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति के पास ये चार चीजें होती हैं तो वो भगवान के सामने झुक नहीं सकता, अपने बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है, और ये एक प्रकार का नशा है। इसलिए निस्सहाय भाव से वो आपके पास नहीं आ सकता। अकिंचन गोचर, कैसे कौन व्यक्ति है जो आपके पास आ सकता है? केवल जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, या होते हुए भी वो इन चीजों से निरासक्त है, ऐसे व्यक्ति को अकिंचन कहते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि जैसे बहुत धनी व्यक्ति जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, वो इस प्रकार के अकिंचन भक्त थे, जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी नहीं के बराबर था, क्योंकि वो बिल्कुल निरासक्त से अपने धन से। दूसरी ओर ऐसे भी भक्त थे जैसे कि श्रीधर खोला बेचा, जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरी तरह से निर्धन थे, गरीब थे, फिर भी उनके पास सबसे बड़ा धन था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो धन श्रीधर खोलावेचा को केले बेचने से प्राप्त हुआ, वो धन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कोटि कोटि कल्पों के बाद भी नहीं मिला। तो वास्तव में भगवान और भक्तों की जो लीला है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसे सोच सकता है कि केले बेचकर आदमी इतना धनी हो जाए कि उसे कृष्ण प्रेम मिल जाए, भगवान की ऐसी असीम कृपा मिल जाए? क्योंकि दुनिया में लोगों की दृष्टि, देखने की जो दृष्टि होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वो लौकिक दृष्टि होती है। परंतु भगवान के भक्तों को यदि हमें जानना है और समझना है तो हमारी दृष्टि दिव्य होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इतने विस्तार में अनेक श्लोकों में समझाते हैं कि कैसे हमें वैष्णवों के प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और ऐसे आगे चलते चलते सात प्रहरी भाव चलता रहा। श्रीधर के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बुलाया और पूछा कि मांगो कुछ। उन्होंने कहा कि मैंने जो मांगा था वो मैं पा गया, मैंने पा लिया। क्या मांगा था अद्वैत आचार्य ने? भगवान को बुलाया था उन्होंने। जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि सारे नवद्वीप में जो कि बड़े बड़े पंडितों से, ब्राह्मणों से, उपाध्याय मिश्र भट्टाचार्यों से भरा हुआ है, परंतु इनमें से एक भी कोई भक्त नहीं है, तो बहुत ही उदास होकर उन्होंने भगवान को बुलाया था। और बल्कि उनके हृदय पूर्वक पुकार के कारण श्री कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, और उन्होंने कृष्ण प्रेम का ऐसे वितरण करना प्रारंभ किया था जिसकी कल्पना अद्वैत आचार्य ने भी उस समय नहीं की थी। उनके मन में विचार था कि भगवान को यहाँ आना चाहिए, धर्म की स्थापना करनी चाहिए, लोगों को कृष्ण भक्त बनाना चाहिए, परंतु उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से, इतनी उदारता से वो ऐसे कृष्ण प्रेम वितरण करेंगे बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई आशा के कि सामने वाले व्यक्ति की क्या योग्यता है, उसकी पात्रता क्या है। पात्रता अपात्रता न देखते हुए उन्होंने गोलोक वृंदावन के सबसे ऊंचे रस का आस्वादन बांटा और मुफ्त में बांटा। तो ऐसी कृपा जब भगवान ने की तो अद्वैत आचार्य और क्या मांगते, बल्कि उन्होंने जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा उनको मिला, तब वो बिल्कुल संतुष्ट थे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उधर दूसरे भक्त आ गए, गदाधर पंडित उनके सामने आए, उनको और कुछ अर्पण किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुरारी आओ यहाँ। मुरारी गुप्त उनके शुद्ध भक्त थे, तो उनको बुलाया और कहा कि आओ और मेरे रूप का दर्शन करो। और जैसे ही मुरारी गुप्त ने अपनी आंखें उठाई महाप्रभु की ओर, तो कहाँ गए वो स्वर्ण रंग के, स्वर्ण कांति के सन्यासी, जिन्होंने कि अरुण रंग, अरुण वस्त्र पहने थे, लाल रंग के वस्त्र पहने थे, वो कहाँ गए सन्यासी? और सामने क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि दुर्व घास की कांति के श्री रामचंद्र वहां बैठे हैं, बाएं तरफ सीता देवी, दाहिने तरफ लक्ष्मण जी बैठे हैं, और इतना ही नहीं, साथ साथ में वानरेंद्र गण जो हैं, वानरों के राजा जो जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े जो वानर सेना के सदस्य थे, वो सब वहां पे उपस्थित थे, वो सब श्री राम की स्तुति कर रहे थे। और इतना ही नहीं, मुरारी गुप्त ने एक बहुत आश्चर्यजनक चीज देखी। वो क्या देखी? पीछे देखा कि अरे मेरी भी पूंछ है, और अपने आप देखा, अरे मैं भी वानर हूं, और अपना रूप भी उन्होंने वानर का रूप देख लिया। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये पूंछ कहां से आई, ये वानर का रूप कहां से आया मेरा। पहले बात तो चकाचौंध हो गए थे कि अब महाप्रभु श्री राम के रूप में थे, उन्होंने प्रकट किया श्री राम का स्वरूप, और इसके बाद ये देखा कि वो स्वयं वानर हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हे मुरारी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि उस दुष्ट रावण ने, जिसने कि सीता का अपहरण किया था, कैसे तुम्हारी पूंछ जलाई थी, और उसके बाद तुमने कैसे रावण को सबक सिखाने के लिए सारी लंका जला डाली थी? क्या तुम्हें याद नहीं है? अब देखो, यहां तुम्हारे आदरणीय सीता देवी हैं, उनका दर्शन कर लो, उनके चरणों में प्रणाम करो। और देखो यहां हैं सुमित्रानंदन लक्ष्मण, जो तुम्हारे प्राण धन हैं, जिनके प्राण बचाने के लिए तुम कूद पड़े थे और गंध माधन पर्वत उठाकर ले आए थे। अब देखो, उठो उठो मुरारी, क्योंकि मुरारी ने ऐसे दर्शन देखा था तो वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो महाप्रभु ने उठाया उनको और कहा कि देखो, और मुरारी अब मांगो, तुम क्या चाहते हो? वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि मुरारी, तुम जानते हो मैं तुम्हारा वही प्रिय प्रभु हूँ श्री रामचंद्र, और तुम तो हनुमान हो। वैसे मुरारी गुप्त वही हनुमान हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में प्रकट हुए हैं इस औदार्य रस का स्वाद लेने के लिए। वैकुंठ जगत का रस है ऐश्वर्य रस, वृंदावन का रस है कौन सा? माधुर्य रस, और नवद्वीप मायापुर का रस है औदार्य रस। औदार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान की उदारता की इसमें सीमा नहीं होती है, जिस प्रकार से वृंदावन में श्री कृष्ण के माधुर्य की सीमा नहीं होती है, वैकुंठ जगत में जिस तरह भगवान के ऐश्वर्य की सीमा नहीं होती है, उसी प्रकार से नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार करते हैं, जिस रूप में उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए मायापुर को औदार्य धाम भी कहते हैं। जिस तरह वृंदावन को माधुर्य धाम कहते हैं और वैकुंठ को ऐश्वर्य धाम कहते हैं। तो फिर कहने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु, ये मुरारी गुप्त, वास्तव में इनका नाम इसलिए आया है कि इनके हृदय में मुरारी अर्थात श्री कृष्ण गुप्त रूप से निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम है मुरारी गुप्त। तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, ऐसे गोविंद कविराज कहते हैं। गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण। गोविंद दास अपनी कविता में लिखते हैं कि वैष्णव के हृदय में गोविंद सदैव विश्राम करते हैं, निवास करते हैं, और इसलिए वैष्णव मेरे प्राण धन है। तो क्या अन्यों के हृदय में भगवान विश्राम नहीं करते? अवश्य करते हैं, परंतु अपने आप को इस तरह से प्रकट नहीं कराते कि वो व्यक्ति उनको जान ले और पहचान ले और देख सके। परंतु वैष्णव भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को जान सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ऐसे गोविंद दास कविराज यहाँ कहते हैं कि वैष्णव के हृदय में भगवान श्री गोविंद निवास करते हैं। तो फिर वो कहने लगे कि इसलिए इनका नाम है मुरारी गुप्ता। मुरारी, अब पूछो क्या वर चाहिए तुम्हें, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, बोलो। तो मुरारी गुप्त कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं मांग लेता हूं कि आप मुझे ये वर प्रदान कीजिए कि मैं सदैव आपका गुणगान करता रहूं, बस यही मैं चाहता हूं। और मांगो और मांगो। ठीक है, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं आपसे कि सदैव मैं आपका स्मरण करता रहूं, जन्म जन्म में, जितने भी आने वाले, जितने भी भविष्य मुझे जन्म मिले, उन जन्मों में मैं आपका स्मरण करता रहूं। और पूछो मुरारी, मुझे ये वरदान प्रदान कीजिए कि जन्म जन्मांतर मैं आपके भक्तों की सेवा करता रहूं, आपके भक्तों के संग में मैं रहूं, बस इतना ही मैं चाहता हूं। और पूछो, मैं यही पूछना चाहता हूं कि ऐसे कभी अवस्था नहीं आए मेरे जीवन में कि आप मेरे प्रभु नहीं रहें और मैं आपका दास नहीं रहूं, सदैव मुझे आप दास के रूप में स्वीकार कीजिए। ये हनुमान जी का भाव है। हनुमान जी दास्य भाव में श्री रामचंद्र की सेवा करते हैं। एक बार जब उनको निराकार ब्रह्म में लीन होने की मुक्ति, सायुज मुक्ति का अवसर मिला था, वरदान मिला था कि क्या तुम्हें, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं, चलो मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, मोक्ष प्रदान करता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं मुझे ऐसे कोई वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि क्या चीज है, भव बंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते। हनुमान जी का जवाब था कि भव बंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये, ये भव बंधन कट जाए और इससे मैं आपके निराकार ब्रह्म में लीन होने के लिए योग्य हो जाऊं, ये मैं नहीं चाहता। स्पृहयामि न, मैं ऐसी इच्छा नहीं रखता हूं। क्यों? क्योंकि भवान प्रभु, आप प्रभु हैं, अहम दास और मैं दास हूं, इति यत्र विलुप्यते, ये भावना नष्ट हो जाएगी। मैं निराकार ज्योति में जाके लीन हो जाऊंगा, न आप मेरे प्रभु रहेंगे और न मैं आपका दास रहूंगा, फिर सेवा और प्रेम का आदान प्रदान कैसे हो सकता है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ये सारे मुक्ति सब नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका सेवक बनना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक और श्लोक बताते हैं जो हमने आज पहली बार पढ़ा, वैसे में थोड़ी देर पहले। नाथ योनि सहस्रेशु येशु येशु व्रजाम्यहम तेषु अच्युता भक्तिर अच्युतास्तु सदात्वयी। बहुत सुंदर श्लोक है। भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ हे प्रभु, हे मेरे नाथ, योनि सहस्रेशु येशु येशु व्रजामि अहम्। व्रजामि मतलब भ्रमण करना, मैं भ्रमण करूँगा। तो येशु येशु सहस्रेशु योनि, जितने भी सहस्र योनियों में मैं भ्रमण करता रहूँ, हे नाथ मुझे क्या चाहिए? तेषु अच्युता भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि, कि सदा आपके प्रति जो अच्युत हैं, आपका नाम आपके प्रति मुझे अच्युतास्तु सदा त्वयि अच्युता भक्ति प्राप्त हो जाए। अच्युत शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। अच्युता भक्ति मुझे चाहिए अच्युत के प्रति, अच्युत अर्थात श्री कृष्ण, जिनका च्युत नहीं होता है, जो कभी जिनका पतन नहीं होता है, जो च्युत नहीं होते हैं कभी, इसलिए उनका नाम है अच्युत। तो अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? अटल होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं अच्युता भक्ति। तो ये प्रार्थना भक्त की होती है। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, भक्त केवल भगवान की सेवा चाहता है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहैतुकी त्वयी। ये भी चैतन्य महाप्रभु के उपदेश हैं, हम सबके लिए शिक्षाएं हैं। मैं धन नहीं चाहता हूँ, सुंदर स्त्री नहीं चाहता, मैं कोई प्रतिष्ठा समाज में नहीं चाहता, अनुयायी नहीं चाहता, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे आपकी अहैतुकी भक्ति मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो ये सच्चा भक्त है, जो मोक्ष नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहता। वो डरता नहीं है कि मुझे पुनर्जन्म मिलेगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ मुझे कष्ट स्वीकार करना होगा भौतिक जगत का। यदि आपको ये चाहिए हे प्रभु, तो हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें केवल आपकी अहेतुकी सेवा चाहिए। तो ये है भक्तों का भाव, और इसलिए तो हनुमान इतने प्रसिद्ध हैं और भक्तों के लिए इतने पूजनीय और इतने प्रिय हैं। ऐसे भक्तों का भाव इस दुनिया में कहाँ दिखाई पड़ता है? कौन है ऐसे व्यक्ति जो अपने प्रभु की सेवा इस भावना से करना चाहता है? और कहाँ हैं ऐसे प्रभु? यहाँ ऐसे मालिक कहाँ मिलते हैं और ऐसे दास कहाँ मिलते हैं? लेकिन श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र की जोड़ी देखी जाए तो बस एक आदर्श जोड़ी है। तो मुरारी गुप्त अपने प्रार्थना से इस भावना को व्यक्त कर रहे हैं, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुन के इतने प्रसन्न हुए कि वो कहने लगे कि मैं आज ये ऊंचे स्वर में घोषणा करता हूँ कि जो व्यक्ति मुरारी गुप्त की निंदा करेगा, उनके प्रति अपराध करेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बल्कि वो लाखों बार भी गंगा में स्नान करे, फिर भी इस अपराध को धो नहीं पाएगा अपने चित्त से। यदि कोई गंगा में स्नान करे या कोई हरि नाम भी ले, परंतु मुरारी गुप्त के प्रति जो अपराध करेगा, उससे वो कभी मुक्त नहीं हो जाएगा, हरि नाम लेने से भी नहीं होगा। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही भक्त मुरारी गुप्त की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। भगवान भी ऐसे ऋणी हो जाते हैं उनके भक्तों के गुणों को देखकर कि वो भी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो हे मुरारी, मैं तुम्हें वर देता हूँ जो तुम्हें इच्छित है। तुम्हारी जितने भी इच्छाएं हैं जो तुमने अब व्यक्त की हैं, वो सारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो वहाँ उपस्थित भक्तों ने सुन ली इस बात को, तो वहाँ जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए कि मुरारी गुप्त को ऐसे वर प्रदान हो गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा इधर उधर, हाँ हरिदास आओ, हरिदास आओ मेरे सामने। पकड़ पकड़ के एक एक के ऊपर वो कृपा बरसा रहे थे, किसी कोई छूट न जाए। सबको अपने अपने नामों से सबको बुला रहे थे, आओ आओ आओ। तो हरिदास आए सामने, और हरिदास ठाकुर के बारे में आप सब तो जानते हैं, वो तो नामाचार्य हैं, उनके जैसे शुद्ध भक्त कहाँ पाया जा सकता है। तो महाप्रभु कहने लगे हरिदास ठाकुर से कि तुम्हारा जो देह है मुझे अपने देह से ज़्यादा प्रिय है, बल्कि तुम्हारे देह को मैं मेरे देह से श्रेष्ठ समझता हूँ। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ऐसे क्यों कह रहे थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर का जन्म एक यवन या मुसलमान परिवार में हुआ था। वैसे क्योंकि यवन वैदिक सभ्यता के विरुद्ध रहते हैं और ऐसे संस्कार उनमें नहीं रहते हैं, वो तो थोड़े अशुचि माने जाते हैं, इतने स्वच्छ नहीं माने जाते उनके वेशभूषा में, उनके कार्यकलापों में, उनके रहन सहन में। मांसाहार करते हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं। इसलिए जो ऊंचे जाति के हिंदू लोग रहते हैं वो उनको उनसे स्पर्श नहीं करते हैं, बल्कि 500-600 साल पहले तक की भी बात है कि यदि किसी मुसलमान का की छाया भी एक हिंदू पर पड़ जाती, किसी ब्राह्मण के ऊपर, तो ऐसे माना जाता कि वो अपने उसने अपना जात खो लिया है और वो मुसलमान बन जाता था। ऐसे होता था पहले, केवल 300-400 साल पहले की बात है कि केवल इसलिए जानबूझकर कभी कुछ किसी को करना होता, जानबूझकर उसके पानी छिड़क देता तो उसको मुसलमान बना देता था। ऐसे भी सब हुआ करता था। तो मुसलमान बनवाया मुसलमान ने नहीं, हिंदुओं ने मुसलमान बनवा दिए सब, कि मुसलमान की छाया इस पर लग गए तो ये बन गए मुसलमान, इसने पानी छिड़क दिया तो वो बन गए मुसलमान। ऐसी घटना भी है वास्तव में। महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था सुबुद्धि राय। वैसे बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उनका एक नौकर था जो मुसलमान था। एक बार उन्होंने उस लड़के को थोड़ा डांटा और पीठ पे थोड़ी एक छड़ी से मार लिया। ये लड़का आगे चल के नवाब बन गया, राजा बन गया। उसका भाग्य कुछ ऐसे निकल आया कि कहाँ एक जमींदार का नौकर था, कहाँ जाके वो राजा बन गया। और राजा बन गया तो पीठ के ऊपर वो छड़ी के निशान अभी तक थे। तो रानी ने एक बार पूछा कि ये क्या निशान है आपके पीठ के ऊपर। अरे ऐसे कुछ नहीं, कुछ बता बताइए बताइए। तो बताया कि हाँ, हमारे प्रिय मालिक थे सुबुद्धि, वो हमसे बहुत प्रेम करते थे, तो एक बार उन्होंने ऐसे हमें छड़ी मार दी। क्या ऐसे छड़ी मारी? तो उनको बड़ा गुस्सा आया, कहा नहीं नहीं, तो इसका अवश्य दंड मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमसे बहुत प्रेम करते थे, नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। आखिर उनको बात माननी पड़ी, जल छिड़का लिया और सारे ब्राह्मणों ने कहा भी आप मुसलमान बन गए, अभी आपके लिए कोई रास्ता नहीं। तो जगह जगह भटकते गए, भाई क्या उसके लिए कोई प्रायश्चित है, कोई उपाय है, कुछ क्या है। किसी ने कहा कोई उपाय नहीं, आत्महत्या करो। किसी ने कहा गरम गरम उबलता हुआ घी आपको पीना होगा। भाई ये कैसे उपाय है, ऐसे उबलता हुआ घी पी लेंगे तो मर ही जाएंगे, तो क्या किया जाए। आखिर वो आए चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु ने एक उपाय बताया। क्या उपाय? हरे कृष्ण जप करो, सब ठीक हो जाए, ये सब भूल जाओ। फिर सुबुद्धि राय ने हरे कृष्ण जप कर दिया, एक सबसे बड़े से बड़ा प्रायश्चित हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम वृंदावन चले जाओ। तो सुबुद्धि राय वृंदावन चले गए और वहीं पर रहे। और जो भी वैष्णव वहां आते थे वृंदावन बंगाल से, उनको वो चावल पका के खिलाते थे। जैसे यहाँ लोगों को भाकरी नहीं खिलाएंगे तो पेट नहीं भरता है ना, उसी प्रकार से बंगाल में लोग जब तक चावल नहीं खाएंगे उनका पेट भरता नहीं। चावल नहीं खाएंगे तो सोचेंगे कि भोजन नहीं लिया हमने। तो वृंदावन में ऐसा नहीं है, वृंदावन में तो ब्रज की रोटी चलती है, जैसे यहाँ की भाकरी के समान है, बड़े 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 मोटे मोटे रोटी होते हैं, ब्रज रोटी स्वादिष्ट भी होते हैं बहुत। तो वहाँ जब बंगाल के वैष्णव आते थे, माधुकरी करके खाते थे, और वहाँ उनको मिले कुछ ब्रज रोटी। अब ब्रज रोटी से बंगाली भक्तों का क्या बने, तो चावल नहीं मिलता था तो बड़े दुखी रहते थे। तो सुबुद्ध राय ने सोचा कि सारे बंगाली वैष्णव जो आएंगे, अब उनको चावल पका के ऐसे खिलाएंगे। तो ये सेवा वैष्णवों की करते थे वो। तो केवल हरे कृष्ण का जप करने से सब ठीक हो गए। तो खैर, कहने का मतलब है कि उस समय वातावरण कुछ ऐसे था। तो चैतन्य महाप्रभु सिखलाना चाहते थे कि जिस प्रकार से ये ब्राह्मण और तथाकथित ऊंची जाति के लोग विचार करते थे, ये भी एक प्रकार की माया है, गहरी माया है, जिसमें वो सोचते थे कि मेरा शरीर ऊंचा है और ये शरीर नीच है, इसलिए ये मेरे लिए निंदनीय शरीर है, अस्पर्शनीय है। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि ये लोग ऐसा सोचते थे क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे, इसलिए ऐसे घोर अंधकार में थे और ऐसा सोचते थे। खुद भक्ति नहीं करते हैं इसलिए उनका शरीर वास्तव में पतित शरीर था, लेकिन ऐसे घमंड उनके अंदर था कि मेरा जन्म बहुत ऊंचा है, मैं ऊंचे कुल का हूं। तो इस बात को साबित करने के लिए कि कृष्ण भक्ति में कोई जाति का भेद नहीं होता है और जाति और ऊंचे कुल का अहंकार लोगों को त्यागना चाहिए और जानना चाहिए कि सच्ची योग्यता केवल कृष्ण भक्ति है, इस बात को साबित करने के लिए महाप्रभु के अनेक अनुयायी और उनके पार्षद शुद्ध भक्त वो ऐसे शरीरों में, ऐसे कुटुंबों में पैदा हुए जो ब्राह्मणों की दृष्टि से नीच माने जाते थे। और केवल चैतन्य महाप्रभु के समय ही नहीं, श्री रामचंद्र के समय में भी देखिए, जब हम बड़े बड़े भक्तों के नाम लेते हैं, श्री रामचंद्र के सबसे पहले नाम हनुमान जी का आता है। हनुमान जी का जन्म कैसा था? वो तो एक वानर शरीर में उनका जन्म हुआ, गरुड़ जी उनके वाहन है भगवान विष्णु के, या जटायु जी हैं पंछी के शरीर में जो नीच शूनी मानी जाती है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं भगवान के भक्तों में। तो भगवान अपने भिन्न अवतारों में इस बात को साबित करना चाहते हैं कि मेरे भक्तों को कम नहीं समझना, भले उस मेरे भक्त का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ हो, उसका शरीर कुरूप हो, वो अनपढ़ हो, जो भी हो, लेकिन है वो मेरा भक्त और मेरे भक्त को ही मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। तो ये है भगवान के देखने का दृष्टिकोण, और हमारा दृष्टिकोण भी ऐसे ही होना चाहिए। लौकिक दृष्टि से देखने से हम अपराध कर बैठेंगे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहने लगे कि हरिदास, तुम्हारा शरीर इतना दिव्य है कि जब वो मुसलमान सैनिक तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे थे, क्या तुम्हें याद है उस समय जब 22 बाजारों में ले गए थे तुम्हें और तुम्हें पीट रहे थे क्योंकि काजी ने तुम्हें दंड दिया था ऐसे ही, और उस समय मैंने इस बात को सहन नहीं की, मैंने वैकुंठ से देखा कि मेरे प्रिय भक्त के ऊपर ऐसे प्रहार चल रहा है, तो मैं तुरंत वहां नीचे चले आया मेरे सुदर्शन चक्र को साथ में लेकर, और उनकी तुरंत हत्या करने वाला था, मैं गर्दन काटने वाला था मेरे सुदर्शन चक्र के द्वारा। परंतु मैं तो अंतर्यामी हूं, तुम्हारे हृदय में भी स्थित हूं, और मैंने जान लिया कि तुम्हारे हृदय में क्या भावना है। तुम इन सैनिकों के ऊपर कृपा करना चाहते थे, तुम इन सैनिकों की भलाई सोच रहे थे, तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि यद्यपि ये लोग मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हे प्रभु इनका नुकसान नहीं करना। देखिए, ऐसी कोई भावना कभी हो सकती है? कोई एक व्यक्ति है जिसके ऊपर लोग ऐसे प्रहार कर रहे हैं, चाबुक से, छड़ी से, बाजारों में, सबके सामने खुले बाजार में उनकी पिटाई कर रहे हैं बुरी तरह से, और एक व्यक्ति सोचे केवल कि ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊं। हाँ, साधारण व्यक्ति सोच सकता है, एक ही विचार मन में आ सकता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन आदमी ये भी सोचेगा कि इनका कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन हरिदास ठाकुर सोच रहे थे इनका भला हो जाए, बल्कि भगवान की प्रार्थना कर रहे थे कि इनका, इनके ऊपर आप क्रोध नहीं कीजिए, इनको दंड मत दीजिए आप। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि हरिदास, उस समय मैंने देखा कि मेरा सुदर्शन चक्र काम ही नहीं कर रहा है। मैं चाहता था सुदर्शन चक्र को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन काम ही नहीं करे, क्योंकि तुम्हारी कृपा मेरे सुदर्शन चक्र के बल से अधिक था, इसलिए तुम्हारे कृपा के सामने मेरा जो सुदर्शन चक्र है वो निष्फल रह गया, विफल रह गया, वो कमजोर रह गया, कुछ नहीं कर पाया, बल्कि मैं भी कुछ नहीं कर पाया, मैं भी तुम्हारी कृपा के सामने बिल्कुल निस्सहाय रह गया। तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, अब हरिदास ठाकुर की कृपा के सामने मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ मैं ये भी नहीं देख सकता कि मेरे प्रिय भक्त के प्रति ऐसे प्रहार हो जाए। तो फिर हे हरिदास, मैंने ये प्रहार मेरे पीठ पे स्वीकार कर लिया, यदि तुम विश्वास नहीं करते हो तो देखो। और फिर महाप्रभु ने अपने पीठ घुमाया और दिखाया कि देखो ये निशान, जो उस समय उन सैनिकों के तुम्हारे ऊपर प्रहार करते समय तुम्हारे पेट के ऊपर ये चिन्ह थे, अब मेरे पीठ पे हैं। तो ये प्रहार मैंने स्वीकार किया, और इस प्रकार से तुम प्रार्थना करते गए और आगे चल के तुम्हारी कृपा से प्रभावित होकर मुझे ऐसे करना पड़ा। तुम्हारे जैसे भक्त कहाँ और होंगे हरिदास, इस दुनिया में और कहीं नहीं तुम्हारे जैसे भक्त मिल पाएंगे, तो मेरी स्तुति करो हरिदास, गाओ, गुणगान करो। तो हरिदास कहने लगे, मैं एक ऐसा नीच व्यक्ति हूँ, इतना अधम हूँ, मैं, मेरी में कोई योग्यता नहीं है, मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकूं, बल्कि आप इतने महान हैं, आप इतने उदार हैं कि कोई छोटा सा व्यक्ति भी हो, एक कीट के समान भी तुच्छ हो, यदि वो आपका स्मरण करे तो आप उसकी रक्षा करते हैं पूरी तरह से, पूरा सुरक्षा प्रदान करते हैं उसको। लेकिन कोई व्यक्ति विश्व सम्राट भी क्यों ना हो, यदि वो आपका स्मरण नहीं करता है तो आप उसका विनाश निश्चित कर देते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपका स्मरण कर ही नहीं सकता, न आपका स्मरण करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना अयोग्य होने के बाद भी आप मुझे आश्रय प्रदान कर रहे हैं, और ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपको स्मरण करने का प्रभाव या फायदा कितना अधिक है, ये इतिहास ही इसके लिए साक्षी है। जिस समय दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया और द्रौपदी ने आपका स्मरण किया प्रेम पूर्वक, तो आप उसके वस्त्र में आ गए, और जैसे जैसे दुशासन और दुर्योधन आपके वस्त्र को, द्रौपदी के वस्त्र को खींचते जा रहे थे, वैसे वैसे उनको समझ में नहीं आया कि आप स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे, और इसलिए आप प्रकट हुए थे कि द्रौपदी आपका स्मरण कर रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु वो प्रह्लाद के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा था, उसने बहुत सारी चीजें की, लेकिन प्रह्लाद केवल आपका स्मरण कर रहा था, इसलिए आप वहां पे प्रकट हुए, आपने प्रह्लाद की रक्षा की। पार्वती देवी एक बार अनेक चुड़ैलों से, डाकिनियों से घिर गई थी और ये आक्रमण करने वाले थी, लेकिन पार्वती देवी ने आपका स्मरण किया और इसलिए आप वहाँ प्रकट हुए और आपने पार्वती देवी की रक्षा कर दी। यहाँ तक कि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, अपने पुत्र को देखा और हे नारायण कहा, लेकिन हे नारायण जब कहा तो आपका स्मरण किया और आप आए और उसे नरक से आपने बचा दिया। तो आपके स्मरण करने का प्रभाव ऐसा है, परंतु मैं तो आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी आप मुझे मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर रहे हैं, ये बहुत विशेष है। और ऐसे हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते गए तो महाप्रभु ने कहा कि हरिदास कुछ मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। नहीं नहीं, जरूर मांगो, कुछ तो मांगो। तो ठीक है प्रभु, आप पूछ ही रहे हैं, आप इतना कह रहे हैं, तो मेरी एक इच्छा है जो आप कृपा करके पूर्ण करें। और वो इच्छा क्या है कि आपके इतने सारे भक्त हैं तो उनका उच्चिष्ट के ऊपर मैं मेरा जीवन निर्वाह करूं और सदैव मुझे आपके भक्तों के उच्चिष्ट को ग्रहण करने का अवसर मिले, ये मेरी प्रार्थना है। केवल इस जन्म में नहीं, आने वाले जितने भी जन्म हों भले, बस मेरी यही इच्छा है। क्या इतिहास में किसी ने ऐसी प्रार्थना की है भगवान से? कोई ऐसे वरदान मांगने का प्रयास भी सोचा भी है किसी ने? ये हरिदास ठाकुर ने ऐसी प्रार्थना की। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष ए तीन महाबल। चैतन्य चरितामृत में ऐसे कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के चरण धूलि, शुद्ध भक्तों के चरणामृत और शुद्ध भक्तों का जो महाप्रसाद होता है, ये बहुत बलवान होते हैं। तो हरिदास ठाकुर यही चाहते थे कि बस मुझे आपके भक्तों का बस महाप्रसाद मुझे मिलता रहे, और कुछ बात नहीं है, और कुछ नहीं चाहता मैं। ये ऐसा वरदान देखिए बहुत विशेष है। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजनों में ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना कि यदि मेरा जन्म हो तो एक कीड़े का भी जन्म हो कोई बात नहीं, लेकिन वैष्णव के घर में हो, ताकि मैं थोड़े महाप्रसाद के टुकड़े इधर उधर कुछ मैं ग्रहण कर सकूं, मैं कीर्तन सुन सकूं। तो ऐसे कीड़े का जन्म मुझे स्वीकार है वैष्णव के घर में, लेकिन एक अभक्त ब्रह्मा जी का जन्म मुझे नहीं चाहिए। यदि मुझे आप सृष्टिकर्ता बनाएंगे, ब्रह्मा बनाएंगे, लेकिन यदि मुझे भक्ति का अवसर नहीं मिले तो मैं ऐसे ब्रह्मा जी भी नहीं बनना चाहता। तो ऐसे भक्तों की भावना होती है। और फिर हरिदास कहने लगे कि शायद ऐसे मांग के मैंने अपराध किया होगा, बहुत बड़ा अपराध किया मैंने ऐसे मांग के। क्यों? क्योंकि ये इतनी ऊंची चीज है कि मैं अपने आप को इस योग्य समझा कि मैं इसे पा सकूं। हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, कोई छोटी चीज, कोई कहे कि मैं आपके चरणों में एक कण भी बन जाऊं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उद्धव महाशय जब वृंदावन गए थे मथुरा से, तो उस समय उन्होंने देख लिया, देख के तो बिल्कुल हैरान हो गए, चकाचौंध हो गए कि व्रजवासियों की भक्ति ऐसी है, मैंने कल्पना ही नहीं की थी कभी। और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं जान गया कि वैष्णव क्या चीज होता है, कि भक्त अर्थात क्या। ये गोपियां सबसे ऊंचे भक्त हैं भगवान कृष्ण के, और गोपी बनना ये तो बहुत ऊंची बात है। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता कि मैं भगवान से पूछूं या भगवान से निवेदन करूं कि मुझे भी आप वृंदावन की गोपी बनाइए। ये तो ऐसी ऊंची चीज है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। ऐसी मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान को ऐसे कुछ वरदान मांगू, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं एक घास का तिनका वृंदावन में अवश्य बन सकता हूँ। इसके लिए तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि घास का तिनका बन जाऊंगा तो गोपियों की चरण धूलि मेरे सर पे बैठती रहेगी। लेकिन अभी हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं कि ये भी मांगना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं घास का तिनका भी वृंदावन में बन जाऊं? क्या वैष्णवों का अवशिष्ट प्राप्त करना भी क्या मैं इस योग्य हूं? तो कहने लगे, प्रभु, हमसे बहुत बड़ी अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो गया कि हमने ऐसी चीजें आपसे मांग ली जिसके लिए हम बिल्कुल योग्य नहीं है। और हरिदास ठाकुर ऐसे प्रार्थना करते गए और महाप्रभु ने सुना। फिर बाद में ऐसे हरिदास ठाकुर की प्रशंसा की कि मानो उनके 5 या 10 मुख हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो लोग बड़े श्रद्धा से मुरारी गुप्त और हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों के प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो उनको अवश्य कृष्ण प्रेम शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु कहने लगे कि हरिदास, अरे ये सब तुम वरदान मांग रहे, अपराध वगैरह की बात कर रहे हो, ये जान लो कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ एक दिन भी बिताएगा, अरे एक दिन की बात छोड़ो, जो थोड़े समय के लिए तुमसे वार्तालाप करेगा, संवाद करेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा, वो व्यक्ति अवश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। ये तुम्हारा स्थान है हरिदास। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की स्तुति करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे गुणों से युक्त होते हैं उनके भक्त जो वास्तव में प्रशंसनीय होते हैं। तो ऐसी सुंदर लीलाओं के द्वारा हम भी जान सकते हैं कि वैष्णव होना क्या चीज है। एक बार हम जो दूसरी जगह ऐसी कोई कहानी बता रहे थे शुद्ध भक्त के बारे में, तो अगले दिन एक भक्त आए हमसे प्रश्न करने के लिए कि हम बहुत उदास हो गए आपके प्रवचन सुन के। भाई, हमने कहा क्या बात है? बोले कि हमने अब ऐसे भक्तों की बातें सुनते हैं, ऐसे इनके जीवन में लीलाएं होती हैं, ऐसी भावनाएं उनके मन में होती हैं, तो हमारी भावना तो ऐसे कभी नहीं हो सकती। तो हम सोचते हैं कि हम तो कभी जीवन सफल बना ही नहीं सकते, इसलिए हम उदास रह गए। तो हमने कहा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, उदासीन होना चाहिए दुनिया से, लेकिन उदास नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्त बिंदास और माया दास सदा उदास, है ना? जो माया का दास होता है वही सदा उदास होता है, लेकिन कृष्ण दास सदा बिंदास होता है। तो ये सब महान भक्तों की कहानियां हम, कथाएं हम सुनते हैं ताकि हमारा चित्त का शुद्धिकरण हो। ऐसे भक्तों के बारे में सुन के हमारा जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है हमारा जीवन। साथ साथ में हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो बल्कि हमें निराश या उदास नहीं होना चाहिए कि हम उनकी तरह नहीं बन सकते। ये तो सब विशेष विशेष महाभागवत भक्त हैं, परंतु यदि भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक हम इनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करेंगे तो अवश्य इनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी और हमारा जीवन सफल अवश्य हो पाएगा। जैसे हम कह रहे थे, इसीलिए कल ही कह रहे थे ना कि कलयुग ये आर्य लोगों के लिए एक पूजनीय युग है। कलिम सभाजयंत्य आर्य गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। कि सारे हमारी इच्छाएं, सारे अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती हैं केवल संकीर्तन के द्वारा इस कलयुग में। इसलिए जो बहुत संत और महात्मा लोग हैं, जो बहुत ही प्रवीण हैं, निपुण हैं, किसी चीज के गुण को समझने के लिए, सार को निकालने के लिए, वो कलयुग की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। कलयुग की जय। बाहर जाके ऐसे बोलेंगे कलयुग की जय, तो कोई कहेंगे ये सिखाते हैं आपको कृष्ण भक्त के मंदिर में, लेकिन हम कहते हैं कलयुग की जय, क्योंकि ऐसे भक्तों के बारे में हमें सुनने मिलता है, ऐसे आसानी से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलता है। श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे। केवल एक प्रश्न के लिए उत्तर है, समय है, हाँ माइक है इधर।
हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि आपने कहा कि हरिदास ठाकुर के प्रार्थना स्वरूप महाप्रभु ने उन यवन सैनिकों को दंड नहीं दिया, उन्होंने जो कौड़े अपने ऊपर स्थान किए, तो इस प्रार्थना को हम कैसे समझें?
बस ऐसे ही समझें जैसे महाप्रभु ने कहा है वैसे ही समझें, कि एक शुद्ध भक्त की कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान के क्रोध को भी रोक सकते हैं। बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे बताते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर एक भक्त की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा पीछे पीछे वहां चली आती है बाध्य होकर। और वो एक मध्यम अधिकारी की बात कर रहे हैं, महाभागवत की बात नहीं कर रहे हैं। कहते मध्यम अधिकारी भक्त यदि किसी के ऊपर कृपा करे तो भगवान की कृपा भी पीछे पीछे आती है। तो वैष्णव होना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को वैष्णव नहीं समझना चाहिए। हाँ, हम वैष्णव नहीं है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं अभी तो नहीं, वैष्णव है, हाँ वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी दर्शन होंगे और कीर्तन भी होगा।